ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसका डायरेक्ट एविडेंस है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो लार्जली एलिमिनेट की जा सकती है जो नए बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें थ्री पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट से जो इन लोगों ने शिशु पैदा किया है, उसमें क्या है कि जो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि कंप्लीटली 100% इनहेरिट होता है, वो उसको रिमूव कर दिया है। और उसमें क्या किया है कि एग को इन्होंने डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के और मदर का जो न्यूक्लियस है वो डोनर सेल में ट्रांसफर किया है, तो उनको हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया मिल गए। और उसमें मदर का जो न्यूक्लियस है जो कि सारा इनकोड करता है जो डीएनए, वो है इंटैक्ट पूरा। तो उसमें क्या है कि बच्चे का जो भी फीचर्स है या बच्चे के जो भी इनहेरिटेड क्वालिटीज हैं जो कि पेरेंट्स से, मदर और फादर से आती हैं, वो तो नहीं बदलती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कंट्रीब्यूट करेगा 0.2% जीनोम, वो सिर्फ डिजीज के लिए मेनली एक्सप्रेस करता है। और उन्होंने क्या किया है, डोनर से हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया को लेके और मदर का न्यूक्लियस लेके और सिर्फ फादर के स्पर्म से उसको फर्टिलाइज किया, तो फादर और जो मदर के ट्रेट्स हैं वो तो 100% इनहेरिट हुए, लेकिन जो मदर से माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए ट्रांसफर होता है, जो इनहेरिट होता है बच्चे में, वो नहीं है, वो सिर्फ डोनर से आया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस तो बहुत हैं, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। और उसके अलावा कुछ चर्च ऑफ इंग्लैंड और दूसरी जगह में एथिकल इम्प्लीकेशंस भी लोगों ने थोड़े आगे लाए हैं। तो ये देखना है कि अभी तो बच्चा 5 महीने का है और आगे जाके क्या जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जैंग जिन्होंने ये प्रोसीजर किया है मैक्सिको में, ये अमेरिकन डॉक्टर हैं लेकिन एथिकल रीजंस की वजह से इनको मैक्सिको जाना पड़ा और इन्होंने वहां पे ये प्रोसीजर कैरी आउट किया जॉर्डेनियन कपल पे। तो इन्होंने जो जैंग डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि पूरा तो डिजीज को जो पॉसिबिलिटी है उसको कंप्लीटली तो एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको टेस्ट किया है और उसमें अभी भी 1% म्यूटेशन प्रेजेंट है बच्चे में। अभी जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है, और जब क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसको, जब ये थ्रेशोल्ड एक्सप्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बढ़ने की वजह से नंबर बढ़ जाएगा, तो उस वजह से जीन का जो कॉपी नंबर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये देखना है फ्यूचर में कि ये एक्चुअली इवेंट होता है कि नहीं बच्चे में। जो 1% है वो बहुत ही कम है और इसकी पॉसिबिलिटी, जो ली सिंड्रोम जिसकी वजह से इसका प्रोसीजर कैरी आउट किया गया, वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है फ्यूचर में। अब ये भी है कि जो न्यूक्लियर डीएनए होता है जो कि इंडिपेंडेंट है माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन क्या है कि इसमें भी जो न्यू माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वो न्यूक्लियस में एनकोड होते हैं और उनका बराबर इंटरेक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बोलते हैं, उनका कनेक्शन न्यूक्लियर डीएनए से भी है। तो इस वजह से क्या है, ये भी देखना है कि ये पॉसिबल जो न्यूक्लियर डीएनए है उसमें कैसा एक्सप्रेशन है इस डिजीज का, क्या
जी
फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं कि नहीं है।
जी
तो ये देखना है, जब बच्ची की उम्र ज्यादा होगी तो पता लगेगा कि और भी क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जो 1980 में जो फर्स्ट प्रोसीजर किया गया था उसमें भी बच्चा पैदा हुआ था फर्स्ट टाइम, लेकिन क्या है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स, मस्कुलर डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ बच्चा पैदा हुआ। तो उसमें डिफरेंस ये था प्रोसीजर में 1980 में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको रिमूव नहीं किया। तो दो तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो मदर से और दूसरे डोनर सेल से, वो एक सेल में आ गए। और जब एग को फर्टिलाइज किया गया स्पर्म के साथ, तो दो तरह के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे। उस वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि वो बच्चे का जो न्यूरोलॉजी को मस्कुलर डिसऑर्डर्स थे उस वजह से हुए,
जी
लेकिन ये नए प्रोसीजर में इन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ डोनर से लिया है।
जी
अब ये पता नहीं है कि डोनर के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें कौन सी डिजीजेस पैदा हैं या वो इनहेरिट होती हैं कि नहीं, ये देखना है फ्यूचर में।
जी ये बताइए डॉक्टर सक्सेना, बिल्कुल संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं के लिए, कि एक होता है डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो भी सेल में होता है लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं होता। तो बहुत ही संक्षिप्त में अगर आप थोड़ा सा अंतर बताएं कि क्या फर्क है, और जैसा कि आपने बताया कि इससे जो माता पिता से जो हमें जीन्स मिलते हैं उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप समझाएं थोड़ा।
हाँ, तो जो जो न्यूक्लियर डीएनए है वो तो हमारा मेन डीएनए है, जो हम हैं, जो हम करते हैं, और जो हमारे सारा एक्सप्रेशन है हमारा, जो मदर और फादर के जो ट्रेट्स हैं उनका एक्सप्रेशन, वो सारा न्यूक्लियर डीएनए में स्टोर है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें सिर्फ 1% ऑफ द जीनोम इज प्रेजेंट, सो देर आर ओनली 37 जीन्स विच आर एनकोडेड एज अपोज टू 25,000 जीन्स बाय न्यूक्लियर डीएनए, सो दैट्स अ बिग डिफरेंस।
जी, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है मेरे ख्याल से एनर्जी के लिए।
एनर्जी, दैट्स राइट। तो जो भी इसमें 37 जीन्स हैं वो सारे एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। तो आप देखिए जो भी डिजीजेज हैं, मेनली जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हैं वो एनर्जी और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। जैसे आप डायबिटीज देख लीजिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देख लीजिए, और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज देख लीजिए, जैसे अल्जाइमर्स हैं, पार्किंसंस हैं, डिमेंशिया। तो क्या है कि जब जहां पे भी जिस टिश्यू में नर्व सेल या मसल्स इन्वॉल्व हैं और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, वो जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ज्यादा ट्रबलसम होंगे।
जी जी, बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर सक्सेना आपसे पूछना चाहते हैं कि ये तो चलिए ये यहाँ पर जो माता थी उनको शायद कुछ एक स्पेसिफिक बीमारी थी, पर क्या आप देखते हैं कि ये अगर तकनीक सफल होती है तो आगे चलते हुए ये तकनीक जो है वो आम भी हो सकती है? मतलब क्या आप ऐसा समय देख रहे हैं बहुत जल्द आते हुए ये, या इस तरह से मिलती जुलती मतलब जहां जीन्स को टैम्पर किया जा रहा है वो प्रक्रिया टू अवॉइड डिजीजेस इन द ऑफस्प्रिंग?
हाँ, तो देखिए जो जो एथिकल चैलेंज जो डिलेमा है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन क्या है कि जो जो इंग्लैंड में जो एथिकल अप्रूवल मिला है उसमें जो न्यूक्लियर डीएनए का मैनिपुलेशन वो उस पर तो बैन अभी भी है, और जो परमिशन है अभी वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर है, लेकिन उस पर क्या है कि हमारा कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेलुलर ट्रांसफर हो रहा है इस समय। सो कोई जीन कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है बाय जीन एडिटिंग एंड ऑल, सो देर इज लेस एथिकल डायलेमा, और देर इज मैसिव सपोर्ट यू नो फ्रॉम इंटरनेशनल साइंटिस्ट एंड क्लिनिशियंस। सो आई थिंक दिस टेक्निक हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ऑल वी हैव टू सी whether this technique really works in sort of eliminating the disease or not.
जी.
So the future of this technique still lies in the growth of the baby, you know, and time will tell.
Dr. Saxena, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you very much.